Om Shanti. Good evening. Education beyond degrees. इस विषय पर जो हमारे तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके पहले दिन के शाम के पहले सत्र में आप सबका दिल से स्वागत है. जो भी उपस्थित हमारे डेलीगेट्स हैं, काउंसलर्स और एजुकेटर्स हैं, सारे सबका आमंत्रण है, सबका स्वागत है. और उसके साथ ही साथ हमारे सारे आदरणीय पैनलिस्ट जो यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका भी दिल से स्वागत है. मैं अभी चाहूंगी कि हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं वो मंच पर आए. तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुदेश दीदी जी को. सुदेश दीदी, आप सीनियर राजयोग प्रैक्टिशनर है, एजुकेटर है और जोनल कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन विंग के. और आपका आप अराउंड 49 इयर्स से आप राजयोग मेडिटेशन का अपने जीवन में अभ्यास कर रहे हैं. और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सेशंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर लिए हुए हैं और अलग अलग देशों में उन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ है. स्पिरिचुअल फेयर्स, एग्जीबिशंस, इंटरैक्टिव वर्कशॉप, डिस्कशंस के थ्रू उन्होंने अनेक जीवनों को अपने स्पिरिचुअल टच से एनहांस किया है. तो आपका दिल से स्वागत है. हम करतल ध्वनि से दीदी का इस मंच पर स्वागत करते हैं. अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट को, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वी बालकृष्ण रेड्डी जी को. आप चेयरमैन है तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के. ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड लीगल स्कॉलर, पॉलिसी आर्किटेक्ट एंड थॉट लीडर इन हायर एजुकेशन रिफॉर्म. तो आज आप देख पाएंगे हम इनका भी करतल ध्वनि से स्टेज पर, मंच पर स्वागत करेंगे. हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज के दिन हमें बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनलिस्ट मिले हैं जिन्होंने एजुकेशन फील्ड में बहुत सुंदर बहुत सालों से काम किया हुआ है. आगे मैं बुलाना चाहूंगी हम सबके बीच में प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी को. जी, आप रेक्टर वन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के हैं. ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियन, सोशल साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंटेलेक्चुअल लीडरशिप विथ पर्सनल डिसिप्लिन एंड सोशल कमिटमेंट. तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि करतल ध्वनि से हम प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी का भी स्वागत करें. आगे मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रितु गिल्होत्रा जी को. आप वाइस चांसलर है सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के और शी इज एन अकम्प्लिश्ड एकेडमिक लीडर, रिसर्चर एंड एजुकेटर इन द हेल्थ साइंसेस. सो इनका भी हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर पराग सांघानी जी को. आप वाइस चांसलर एंड सीईओ है पीपी सावनी यूनिवर्सिटी के. ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक लीडर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड इनोवेटर. तो इनका भी हम सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे. अब मैं बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पैनलिस्ट का बैज और पौधे से, तुलसी के पौधे से स्वागत करें. तो आदरणीय मंच और सारे उपस्थित हमारे एजुकेटर्स, जैसे आज का हमारा टॉपिक या थीम ही हमारी जो अभी के कॉन्फ्रेंस की है, एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज, तो ये एक ऐसा प्रश्न है या ऐसा टॉपिक है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि एजुकेशन का सही मतलब क्या है, सही मायने में हम एजुकेशन को कैसे देखें. कि एक नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए एक साधन है, क्या एजुकेशन माना सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर है या बच्चों को प्रोफेशनल डिग्रीज देना है या उसके परे, उसके बियॉन्ड कुछ है जो एक नीड अभी के समय पर हम सब एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं. कि सिर्फ मियर एजुकेशन देके या जिस तरह से अभी के समय पर चल रहा है तो उसके बियॉन्ड कहाँ पे एक सोच हमारी चलनी चाहिए जो बच्चों का, स्टूडेंट्स का एक सर्वांगीण विकास हो सके और जो उनके अंदर है, जो पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल उनके अंदर है, जो पोटेंशियल छिपा हुआ है उसको हम निकाल सके. मैं समझते हम सब जानते हैं कि एजुकेशन ये शब्द आता है लैटिन वर्ड एजुकारे, जिसका मीनिंग आ जाता है टू ड्रॉ, टू नरिश। तो जो ऑलरेडी उनके अंदर है उसको हमें बाहर निकालना है। तो मैं समझती हूँ एजुकेशन सिस्टम का सबसे मेन जो एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इज टू ड्रॉ, ऑलरेडी है, हमें सिर्फ एक फैसिलिटेटर बनना है जो उनके अंदर पोटेंशियल है वो बाहर आता चले। तो अब जब हमें ये करना है, वेन वी हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज, देन वी नीड टू डेफिनेटली थिंक अबाउट एजुकेटर्स बियॉन्ड मियर रोल्स। एजुकेटर ये सिर्फ एक रोल नहीं है, माना ह्यूमन डूइंग कि ये इनका रोल है और इनके ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इससे परे जाकर हमें कुछ सोचना होगा, एंड दैट इज थिंकिंग एट द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि वो जो बीइंग है, वो जो चेतना है जिसके हाथ में अनेकों को, हजारों स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत है, क्या हम उस चेतना के ऊपर काम कर सकते हैं, क्या उसके होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर काम कर सकते हैं। और इसी एक सुंदर विषय को लेकर आज का चर्चा सत्र हमने आयोजित किया हुआ है, जिसके लिए हमें बहुत ही अनुभवी पैनलिस्ट का लाभ मिला हुआ है। तो इस चर्चा सत्र को शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं एक प्रश्न सुदेश दीदी जी को पूछना चाहूंगी कि दीदी, आपके लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से होलिस्टिक वेलबींग ऑफ एजुकेटर्स इसमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए?
गुड इवनिंग, ओम शांति। मैं समझती हूँ जो इधर हैं सब इधर सेंटर में आ जाएं तो और भी अच्छा होगा, पीछे वाले आगे आ जाएं, हा? तो हमारी पावर बढ़ जाएगी। पीछे से आगे आ जाओ, चांस मिल रहा है आज। होलिस्टिक हेल्थ, जैसे हमारी सुप्रिया भिंची ने पूछा कि एजुकेटर्स के लिए होलिस्टिक हेल्थ का क्या, डेवलपमेंट का क्या मायना रखता है, तो आप देखते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ के चार पहलू होते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, मेंटली कहो या इमोशनली कहो। तो इन सभी के ऊपर स्पिरिचुअलिटी का हाथ है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी हॉल बनाएंगे तो ऊपर से रूफ नहीं होगी तो हम यहाँ बैठ नहीं सकेंगे, बारिश के दिनों में भीगेंगे, गर्मी के दिनों में धूप से पसीने में तरमतर हो जाएंगे। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ऐसा ही काम करती है, तीनों ही पहलू के ऊपर वो एक छत का काम करती है, जिसको आज हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तीनों पिलर्स के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के पिलर का होना बहुत बहुत आवश्यकता है, आवश्यक है। अगर आप देखें कि ये टेबल है, इसमें फोर लेग्स हैं, अगर उसमें से एक लेग हट जाए तो स्टेबल नहीं हो पाएगी, मानते हैं इस बात को? चाहे तीनों जो पाए हैं वो आपके सोने के हों, चांदी के हों, लेकिन फोर्थ जो लेग है उसकी अगर आपके नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा काम। तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इस कदर हमको बैलेंस करना सिखाती है, स्टेबल करना सिखाती है एजुकेटर्स की लाइफ के अंदर। एजुकेटर स्टूडेंट्स को कैसे स्टेबल माइंड से पढ़ाते हैं, अगर मन शांत, स्थिर और स्टेबल नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, तो बच्चों को वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इस बात को आप मानते हैं जो भी एजुकेटर्स हैं? जब आप घर से डिस्टर्ब होकर जाते हैं तो आप डिस्टर्ब मन से ही बच्चों को पढ़ाकर आ जाते हैं, एक दो को डांट आते हैं, आधा अधूरा पढ़ा देंगे और कुछ अनमने मन से पढ़ा देंगे, ऐसा हो जाता है, होना स्वाभाविक है। तो आध्यात्मिकता के होने से हम इस तरह की कमियों को कवर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हम अगर लेते हैं आध्यात्मिकता का हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसमें जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिकता उसमें ड्राइवर का काम करती है। अगर ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं लेकिन अपनी हेल्थ को लड़ने झगड़ने में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आध्यात्मिकता कहती है नहीं, हमको दूसरों को सम्मान देना है, कोई अगर हमारे साथ ऐसा मिसबिहेव करता है तो हमें फिर भी उसके साथ में अच्छा ही व्यवहार करना है। तो ये हेल्थ भी हमारी जो है प्रॉपर चैनल पर यूज होती है। तो इस प्रकार से मैं कहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत 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 आवश्यक है, जो कि हमारी इनर स्टडी करती है, स्टडी ऑफ इनर सेल्फ।
जी बहुत अच्छा। तो दीदी ने यहाँ पे मेनली हमने जैसे देखा चार वेलबींग के ऊपर प्रकाश डाला, मेंटल इमोशन फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। मैं जानना चाहूंगी आप में से कोई भी अगर आंसर करना चाहे कि ये चार वेलबींग के एस्पेक्ट छोड़कर क्या आप और भी कुछ एस्पेक्ट्स देख पाते हैं जो एजुकेटर्स के वेलबींग के लिए अभी के समय पर जिनके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। तो डॉक्टर पराग सांघानी जी,
डिजिटल वेलबींग मुझे लगता है कि अभी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, हाइब्रिड क्लासेस, तो हाउ डिजिटली यू नो एजुकेटर्स विल बी मोर वेल वर्स एंड एट द सेम टाइम एबल टू सेल्फ कंट्रोल
राइट
दिस यू नो सो वी कैन कॉल इट एज अ डिजिटल वेलबींग इज ऑल्सो समथिंग वी शुड।
और ये छोड़ के भी किसी को और कुछ ऐड करना है कोई एस्पेक्ट?
डेफिनेटली
जी,
थैंक यू। सो एथिकल वेलबींग, टुडे वी आर इन द यू नो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, सो ethical values, when we use technology, coming to this, so when we use technology, today we are using technology, data is everywhere, so when we use this kind of things, I think we have to have one is privacy, other issues, apart from that, you know, ethical or, you know, that is also very important, ethical well-being, physical, mental, social, ethical, you know, digital, these are all definitely important. I added one, ethical well-being.
जी, very nice. तो हम देख पाते हैं होलिस्टिकली जब हमें किसी का भी वेलबींग की बात जब हम करते हैं तो अलग अलग आयाम उसको है, एस्पेक्ट्स है, तो बहुत सारे तो कवर हो चुके हैं। उसके साथ ही हम कहना चाहेंगे सोशल वेलबींग, द वे वी रिलेट टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स, वहाँ पे भी ध्यान देना है हमें। इंटेलेक्चुअल वेलबींग, कि हमारी इंटेलेक्ट इतनी शार्प हो जो सही गलत की पहचान हम ठीक से कर पाए हर समय। और मैं समझती हूँ एजुकेटर्स के लिए तो वो बहुत मायने रखता ही है, बट जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग ये इंटेलेक्चुअल वेलबींग हमें जरूर अपने जीवन को ठीक से जीने में के लिए मदद करता है। एनवायरमेंटल वेलबींग भी जरूर है इसमें, बिकॉज एजुकेटर इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और हमारी निरंतर लेन देन एक एनवायरमेंट के साथ भी है। तो अगर हम होलिस्टिकली एक न कि सिर्फ एक रोल को देखें बट एक व्यक्ति को देखें, तो उसके सारे ही वेलबींग के एस्पेक्ट्स को जब हम कवर करते चलेंगे तो जो एक स्वस्थ व्यक्ति है मन से, शरीर से, भावनाओं से, संबंधों में स्वस्थ है, वो अब समाज निर्मिति के लिए एक बहुत सुंदर कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो और जैसे दीदी ने अंडरलाइन किया कि सबका बेस स्पिरिचुअल वेलबींग है, शुरुआत ही वहां से है, तो उसके ऊपर हम जरूर आगे एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो आगे का प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी रितु मैम को। हम समझते हैं, मैंने हम जानते हैं इस चीज को, आपका हेल्थ साइंसेस में काम है, और हमेशा हेल्थ साइंसेस में ये समझा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी के समय पर क्या ये प्रिंसिपल हमें एजुकेटर्स के लिए भी हम लगा सकते हैं कि प्रिवेंटिव वेलबींग प्रैक्टिसेस रादर देन रिएक्टिव इंटरवेंशंस।
गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सुप्रिया फॉर सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। यस ऑफ कोर्स, इन द मेडिकल बैकग्राउंड वी ऑलवेज यू नो से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स एज फार एज द वेलबींग ऑफ द फैकल्टीज एंड द यू नो एजुकेटर्स आर कंसर्न। सो द प्रिवेंटिव अप्रोच क्या हुई कि इससे पहले कि कोई बर्नआउट हो एजुकेटर्स का, या कोई यू नो दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द वे वी वॉन्ट, उसके पहले ही हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं कि उन जो कॉजेज हो सकते हैं उसके लिए पॉसिबली, उनको हम पहले से ही खत्म करें। सो द कॉजेज दैट कैन लीड टू दी देम टू बर्न आउट और नॉट एबल टू डिलीवर एज वी वॉन्ट कुड बी, जैसे आजकल क्या हम देख रहे हैं कि टीचर्स का, एजुकेटर्स का जो वर्कलोड है वो मल्टीपल लेयर्स हो गया है। मतलब हम जिन तरह के टीचर्स से पढ़े, एक्सीलेंट टीचर्स दे वर, बट दे हैड मोर ऑटोनॉमी, दे हैड मोर यू नो कंट्रोल ओवर द वे दे वॉन्टेड टू टीच एंड एवरीथिंग. अभी क्या है कि सारी चीज़ें काफ़ी पैटर्न हो गई हैं, नो डाउट. मतलब उससे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेल ही कर रहे हैं, लेकिन देर इज अ लेयर ऑफ मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल यू नो थिंग्स दैट दे आर डूइंग. सेकेंडली ऑल्सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग. दे आर कंटिन्यूसली डूइंग एन वर्क विच इज इमोशनली ड्रेनिंग बिकॉज दे आर इन टू द क्लासरूम्स, दे आर डीलिंग विद द लाइफ. यू नो माई चेयरमैन सेज दैट you know a teacher goes into a class and uses his 1 hour, but if it's a class of 30 40 60 or 100, he's using 100 hours of the student. So you know that kind of the life to life interaction they are doing, they are teaching, they are nurturing, jo palan kar rahe hain wo us tarike se. To uske alawa jaise aajkal nayi aur cheeze hain, personal tutoring hai, tutor guardian relationship hai, unko हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की सारी जानकारी हो, बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है. सो दीज आर सम काइंड ऑफ द अनएक्नॉलेज्ड यू कैन से वर्क दे आर डूइंग, यू नो दे कंटिन्यूअसली डूइंग इट. सो दिस इमोशनल ड्रेनेज जो उनका हो रहा है साथ साथ में, उसको हम कैसे उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं. सो दीज कुड बी द थिंग्स दैट कैन लीड टू द प्रिवेंटिव अप्रोच टू अ बेटर होलिस्टिक यू कैन से द एजुकेटर. एंड जो दूसरा हम बात कर रहे हैं कि वेन समथिंग हैज हैपेंड एंड देन वी गो ऑन मेकअप टू दोज थिंग्स, देन द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन टू द स्टूडेंट्स, टू द फैकल्टी, टू द सिस्टम एज वेल. सो प्रिवेंटिवली जाने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है. हमें स्ट्रांगली समझना होगा कि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लाइक हम यहां भी आए तो हम आप लोगों को देख रहे हैं, राइट. सो यहां का सबसे स्ट्रांगेस्ट टूल आप लोग हैं, राइट. सो किसी भी इंस्टीट्यूट का स्ट्रांगेस्ट टूल उसका फैकल्टी होता है, ना कि बिल्डिंग्स, ना कि हमने कैसे ऑडिटोरियम्स बनाए, हमने कैसे लैब्स डेवलप करी. सो उनको स्ट्रेंथन करना, उनको सेफगार्ड भी करना, उनका होलिस्टिक, बिकॉज हम स्टूडेंट का भी क्या चाह रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट. सो हु कैन डेवलप देम होलिस्टिकली, हु हिमसेल्फ इज होलिस्टिकली यू नो डेवलप्ड. सो स्ट्रांग पॉलिसी मेकिंग इंक्लूडिंग द काइंड ऑफ द विजडम दैट वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर 2-3 days एंड डेज टू कम, including those in strongly into the implementation you know dynamics. These are the things we need to do, gearing them more for the time management, more being more compassionate with the children, and of course passionate about their own work. So this is structural training we should be doing, so that we can do something for them to be you know already on a good, better, holistic, like jaise didi ne bola bhi कि उस तरीके से टीचर्स को हम डेवलप कर सकें. एंड अभी समय जो है एजुकेशन का काफ़ी चैलेंजिंग है, बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत डिजिटल लर्निंग के आने से, पोस्ट कोविड चीज़ों का सिनेरियो बदलने से, जिस तरीके से NEP भी नया इम्प्लीमेंट हुआ है और बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं. सो इन सब चीज़ों को करने के टूल्स ऑफ कोर्स फिर से टीचर्स ही हैं, उनके मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हेल्थ को सेफगार्ड करना, ये मुझे लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए और इनको स्ट्रांगली पॉलिसीज में डालना चाहिए. थैंक यू.
बहुत अच्छा. जब आप पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज को तो हर कोई मानेगा ही कि प्रिवेंटिव मेजर्स पे ही हमें मेनली ध्यान देना है, कि जिसको नर्चर करना है उसे उसके खुद के नरिशमेंट की जरूरत है, वो नर्चर होना जरूरी है तो ही वो दे पाएगा. जब तक मेरे पास कुछ नहीं है मैं कैसे दे पाऊंगी. तो जो हमारी पहले से ही बात चल रही थी कि नॉलेज ट्रांसफर तो हम कर लेते क्योंकि हमने तो सीखा हुआ है ना, वी हैव एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, लेकिन उसके आगे कुछ एक बात है जो उन्होंने बहुत सुंदर रीति से हाईलाइट की, कंपैशनेट टीचिंग. अभी के समय पर जब हम बच्चों में भी ये देख रहे हैं डिजिटल एरा में, क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रांग कनेक्शन है जो इतना ठीक से अभी भी नहीं समझा है, ऑल्दो अभी इसके ऊपर काम हो रहा है. ये जो एक डिजिटल मीडिया और डिजिटल गैजेट्स का एक एडिक्शन हो चुका है, उसका इमोशनल हेल्थ पर स्टूडेंट्स के या यूथ के कहो, या जो भी उसको ओवर यूज कर रहा है या एडिक्शन की तरफ जा रहा है, उसके मेंटल हेल्थ पर असर आ रहा है. और अभी के समय पर हम देख पा रहे हैं कि चलो भारत में यूथ बहुत ज्यादा है ना, यूथ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो यूथ भारत की शक्ति तभी बन सकता है जब वो मेंटली स्ट्रांग है, फिजिकली फिट है, उसका एक बहुत सुंदर कैरेक्टर है, एक अच्छा चरित्र उसका बना हुआ है, वैल्यूज के ऊपर वो जी रहा है. तो जब बींग एन एजुकेटर मैं भी इस फील्ड के चैलेंजेस को जानती हूँ, और सबसे बड़ा चैलेंज यही हम देख पा रहे हैं कि बच्चों का अभी मोटिवेशन स्टडीज में कम होता जा रहा है, बच्चे क्लासेस में भी मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, और सब कुछ तो अभी एआई के थ्रू उनको मिल रहा है, तो एजुकेटर जो है वो रिडंडेंट हो गया है क्या? ऐसा एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क अभी आ रहा है, और तो ये कभी हो ही नहीं सकता, बट स्टूडेंट्स के बीच में एक वो है कि सब कुछ तो वहां पे मिल ही रहा है। सो क्लास में जब हम सिखाने जा रहे हैं तो हम जो सिखाने जा रहे हैं उसका पहले से बहुत ज्यादा चीजें तो उनको ही पता है, तो अब यहाँ पे फिर एजुकेटर का रोल क्या रहेगा? तो जैसे इन्होंने कहा कि कंपैशनेट टीचिंग की नर्चरिंग एआई नहीं कर पाएगा, सोशल मीडिया नहीं कर पाएगा, ये तो एक ह्यूमन टू ह्यूमन टच ही है, एक बींग टू बींग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है, तो उसके लिए तो टीचर का ही मेन रोल है। और ये कंपैशन मेरा जागरूक हो, इसके लिए मेरा बर्नआउट अगर है तो वो नहीं हो पाता है, बिकॉज आई एम थ्राइविंग टू सर्वाइव, एक्चुअली आई एम नॉट थ्राइविंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्वाइव। तो इसके ऊपर जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो मैं आदरणीय रेड्डी सर को ये पूछना चाहूंगी कि ये जो एजुकेटर वेलबींग है या उनका इमोशनल रेजिलियंस, एथिक्स की बात हमने की, इनर डेवलपमेंट की बात की, तो क्या इनके लिए कुछ पॉलिसीज हम एजुकेशनल सिस्टम्स में बना सकते हैं प्रोएक्टिवली?
बिल्कुल, व्हेन वी से यू नो करिकुलम रिफॉर्म्स पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली, बट वी ऑल हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव देयर इज अ रेगुलेटरी बॉडीज, व्हेन वी मेक एनी चेंज वी हैव टू कीप इन माइंड द रेगुलेटरी बॉडीज, वेदर इट इज अ यूजीसी, whether it's the AICT, whether it's the bar council, whether it's the pharma council, all these things. So iska hisab se jo you know regulatory bodies hai wo jahan flexibility deta hai wahan universities or institutions can you know make these changes in the policy. But for example abhi national education policy 2020 hai, NEP is not new to us. NEP was there in 68, NEP was there in 86, but this NEP 2020 is a holistic, you know, education document, you know, covering all aspects, what we call multidisciplinary, interdisciplinary, intra, one, you know, with other. So that's where, you know, this NEP 2020 is, you know, a document which is giving a education in the 21st century, keeping in view of holistic education. That's what, you know, definitely, you know, policy making, governments, regulatory bodies also keeping, you know, this kind of views. For example, 20% today, any, you know, whether any graduate, whether BA, BSc, BCom, BBA, has to have a technology component, ethical component, then we have a value added component, you know, internship component. Like that, you know, this kind of, you know, inclusion is there. So wherever, whenever possible, I think you know institutions or we educators have to include that. That's the possibility is there.
Okay, thank you so much. अगला प्रश्न मैं अभी प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी को पूछना चाहूंगी। As a social scientist, आप ये जो relationship है कि educator well-being and social emotional climate of campus, क्योंकि हम समझते नींव है, फाउंडर फाउंडेशन में आ जाते हैं एजुकेटर्स, तो उनका जो एक ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग है, उसका जो कैंपस का एक जो एक एनवायरनमेंट बनता है, सोशल इमोशनल क्लाइमेट एक जो बनता है, उसके ऊपर क्या असर है?
मोस्टली नाउडेज एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, see if we see the development of education, whatever happened in the say 60s, 70s till 80s, particularly in the school systems or education systems or even in society, there were certain explicit lessons on values, moralities and relationship between the teachers, students and neighborhood, which has transformed a lot, particularly since 90s. And nowadays, if you see the way teachers are supposed to deal with the students, or the students trying to getting lessons on the moralities or values or regarding the mutual respects of each and every members of the class or between the student and teachers and students and the staffs, all has changed. Mostly you find that there are certain prescriptions from the top that teachers are supposed to deal with the students like this. Even if you feel something, this is eminent to deal the students like this, you are not supposed to do it. So they are growing up in such situations. And when they are coming in the higher educations, so their mindset is totally different. The way a teacher in 70s or 80s could have been dealt with the students at, say, graduation, undergraduation, even in the research level, nowadays that's not so easy. Students, they themselves think that they are so much empowered. Sometimes their interpretations related to values, moralities, or mutual respects regarding the teacher-student, student and the other educational staff, or the student related to the contributions of the student to the society, altogether different. In such situations, handling the students are very, very difficult. I am telling difficult because that if you try to give, I do not know, it is more important in Delhi or in any metropolitan cities. You cannot give any preachings related to moral or value things. And you might have heard that moral policing, that you cannot actually, not in the class, even outside the class, even outside the interactions of the educational institutions. If someone does something, some activities, they will be telling it is our personal or private activities. You are not supposed to give us the guidance, or neither you have the right, which was not there in 70s, 80s or like that. It is very, very difficult. Another thing is that we are growing in such a situations that our different ideological practices are becoming very, very strong. And sometimes it is so polarized and students become insolent to accommodate or even in a very assimilative attitude to accept different ideological thing in same areas. So you find it in such political polarizations, dealing the campus is very, very difficult. Sometimes so many conflicts are coming up even within the peer groups, then it becomes very difficult. Related to digital thing, I think nowadays it becomes very, very difficult. So the campuses which are having both the sexes of the students and sometimes some untoward incidents are happening which are not, should be happening. The people are very, very interested for the social media participation. You cannot block them. But if something is happening, you are whole soul responsibility for all these things. When you are an educational administrator, you cannot say we didn't know it or we cannot call that. So neither you can give them the legal warnings that these are the things you supposed to do it, nor you cannot address their habits which actually give them certain guidance to avert certain unwanted things. Because moral policing, that will come. They will say that we have grown enough and you need not to give these preachings.
So aapne
in such difficulties, most of the metropolitan cities, actually the education and campuses, I think you have heard about the T's. You have heard about the Delhi University campus. You have heard about Jawaharlal Nehru University, certain university, Banaras Hindu University, or Hyderabad National University, the big institutions. So these are the problems. So the difference between the students and the educators or the administrators in new regime, the challenges are totally different.
Different, right. आपने दो मुख्य challenges, और मैं completely सहमत हूँ जो भी आपने share किया. और सिर्फ उस साइड के universities ने भारत भर में ही, अभी हम महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ पे भी exactly same problems we are facing with students. कि जैसे आपने दो problems को highlight किया कि value systems उनकी बदल गई है, और अगर हम कुछ उनको preach करना चाहिए या समझाना चाहिए, they don't want that kind of advices. एक, but हमारा as an educator वो role भी होता है कि हम उनको कुछ समझाए, तो फिर वो कैसे करे. That is one of the biggest problems that we all are facing right now. एंड दूसरा जो आपने सोशल मीडिया
द ड्रेसेस और देयर पब्लिक पोस्चर्स बिटवीन गर्ल स्टूडेंट्स बॉय स्टूडेंट्स यू कैन नॉट गिव देम एनी वेदर इन द क्लासरूम और इन पब्लिक प्लेस और कैंटीन और इन सर्टेन स्पोर्ट्स ग्राउंड्स those are becoming but if some untoward thing happens you are responsible and supposed to
control as an administrator then we are responsible right. तो जैसे ये दो प्रॉब्लम्स के लिए सोशल मीडिया की भी बात कही, अभी थर्ड भी वो फिर से वैल्यू सिस्टम के ऊपर ही आ जाता है. तो मैं डॉक्टर पराग जी से ये जानना चाहूंगी, क्या आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं एजुकेटर्स जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, जिससे बर्नआउट हो रहा है, इमोशनली कहो फिजिकली कहो, कि वो ओवरलोड हो रहे हैं चीजों को हैंडल करते करते.
तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बर्नआउट क्यों हो रहा है
जी.
तो उसका रूट कोज अगर आप देखेंगे तो टोटली हमारी एजुकेशन सिस्टम जो लॉर्ड मैकलन ने डिजाइन की, दे पुट स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ द यू नो एजुकेशन. फर्स्ट थिंग उन्होंने ये किया और आज भी चल रहा है. कई कॉलेजेस में प्रेयर्स नहीं होते, कई कॉलेज में यू नो राष्ट्रगान नहीं होते. तो मेरा पहला कहना है कि स्पिरिचुअलिटी जैसी आ जाएगी वेलबींग अपने आप आ ही जाएगा, एंड वी आर ऑन राइट पाथ ऑन दैट नाउ वी आर एडिंग सच थिंग्स. दूसरा जो आज का ट्रेंड है, आप देखिए कि रैंकिंग, यू नो कंपटीशन फॉर एडमिशंस, स्कूल लेवल पे देखे तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन वर्क की अभी जो पॉपुलेशन सर्वे रहेगा ये रहेगा, तो टीचर्स टीचिंग के सिवा सब कुछ कर रहे हैं. दे बिकेम रादर देन टीचर दे बिकेम ए क्लार्क. और सर ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि पहले के टाइम में सांदीपनी ऋषि भगवान कृष्ण हो तो भी गांव उससे लकड़े कटवा सकते थे, आज का टीचर तो कुछ ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता. तो वो स्ट्रेस का कारण, तो उसी लिए उसका सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन है उनकी पेशेंस बढ़ानी पड़ेगी, उनकी वेलबींग के लिए काम करना पड़ेगा. कौन करेगा? एंड दैट इज वेयर सोसाइटी का ही पार्ट है. सोसाइटी हैज टू अंडरस्टूड. आज हम ये देखते हैं, हम में से कई टीचर्स ये फेस करते हैं, मां बाप आते हैं, बेटा ये मेरा लड़का है ये ऐसा ही है, ये तूफान करेगा, ये मारेगा, ये सब करेगा, आप संभालो. एंड दैट इज वेयर द स्ट्रेस कम्स. उनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस जो सोसाइटी में चल रहा है वो तो है ही है, उनके साथ साथ ये स्ट्रेस उनको बहुत ही बर्नआउट करते हैं. एंड देयर इज नो सिस्टम जो टीचर को एक घंटे भी बैठने दे. वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको हम बढ़ा सकते. चीजें चेंज नहीं होगी, उनकी पेशेंस कैसे चेंज होगी, क्लास में ऊंची आवाज किए बिना उनसे कैसे परस्यू, तो वो ट्रेनिंग नहीं. पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया, आज भी वही टीचर को वही बुक से पढ़ाना पड़ता है, उसको पता नहीं है कि अब बच्चे को कैसे चल. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग एंड देर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव. और हम बात करते हैं गूगल में ये हो गया, माइक्रोसॉफ्ट में ये हो गया, बट हमारे यहां क्या हो रहा. सो वी हैव टू वर्क ऑन द प्रोग्राम्स. जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में हमने शुरू किया दैट वुमेन टीचर्स हैं, तो हमने उसको दो दिन वर्क फ्रॉम होम दिया कि बच्चा है अगर आपका तो आपको दो दिन वर्क फ्रॉम होम करना है, अगर आपका रिपोर्टिंग ऑथोरिटी करता है तो यू कैन अलाउ. हमने उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल लीव्स दी. हम यूनिवर्सिटी में हमने इस बार से शुरू किया कि जैसे LTA देते हैं तो 10 दिन की स्पिरिचुअल लीव हम देंगे अगर 5 साल में अगर हमारा स्टाफ रहता है. तो हमें ये मेजर्स उठाने पड़ेंगे तब जाके, क्योंकि सबको प्रॉब्लम पता है कि बच्चा मान नहीं रहा है, तो घर में भी नहीं मानता. आज भी हमारे बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, तो आके पांव छूने में किसी को तो वो वैल्यू सिस्टम में इनकल्केट. बट यही बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं, सही चीजों के लिए तैयार, बट उनके लिए रोल मॉडल नहीं. तो वो टीचर के लिए हमें बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव, हर एक जैसे सिंपल गवर्नमेंट का रूल है क्रेच होना चाहिए, हर एक कौन कितनी यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है. तो इन सब वेलबींग के साथ आज उनका 5 साल का बच्चा है वो फेल हो रहा है और उनको दूसरे 60 बच्चे को A+ ग्रेड में लाना है. सो दिस इज द रीजन फॉर दियर बर्नआउट. एंड आई पर्सनली फील कि
ब्रह्मा कुमारीज जैसी संस्थाएं ये टीचर्स के वेलबींग के लिए, उनकी पेशेंस बढ़ाने के लिए, उनकी टॉलरेंस, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी टॉलरेंस बढ़ाने की, बिकॉज प्रॉब्लम नहीं चेंज हो, बच्चा वैसा ही रहेगा, क्योंकि मीडिया हम कितना भी कर ले वो एक्सपोजर रहने ही वाला है. वी कांट हाइड आउट, वी हैव टू ट्रेन द टीचर्स. आज टीचर्स के भी प्रॉब्लम है, आज वो खुद मोबाइल लेके बैठता है, बच्चे बोलते मोबाइल से देख ले आंसर, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि बच्चा निकले. अभी एक मेरा फ्रेंड था एक क्यूटी ऑस्ट्रेलिया में, तो जब वो लेक्चर लेने गया तो उसने एक पीपीटी चलाई, देन टू टीचर्स खड़े होकर बोले कि आप हमें तो एआई का यूज करने का मना करते हो, बट आप खुद तो एआई से ही पीपीटी बना के आते हो. तो ये सब चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हमें रिजोल्व करना पड़ेगा, तभी जाके वेलबींग ऑफ एजुकेटर्स पॉसिबल होगा. इट्स नॉट ए वन सॉल्यूशन, इट्स अ सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस वेयर एनजीओज, गवर्नमेंट, ऑल हैज टू वर्क टुगेदर. एंड देयर ऐसे प्रोग्राम लाभ्य फाउंडेशन के हैं, यू नो इंडिया टीचिंग है, टीचिंग इंडिया कैंपेन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं. बट वी विश कि ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं यूनिवर्सिटीज में, आज हजार से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को स्ट्रेस हैंडलिंग का, यू नो ये सब चीजों के ऊपर काम हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है.
धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर रीति से पॉइंट्स को सामने रखा हुआ है, और जो इनिशिएटिव्स आप ऑलरेडी अपने यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं उनको भी सामने रखा, क्योंकि वही जो हमने पहले भी कहा था, इफ वी हैव टू टेक एजुकेशन बियॉन्ड डिग्रीज देन वी नीड टू थिंक ऑफ एजुकेटर्स बियॉन्ड रोल्स, है ना, कि वो जो बीइंग है उस बीइंग को सस्टेन करना, नर्चर करना, और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, और वो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ कॉम्पिटेंसी देखे, परफॉर्मेंस देखे, रिजल्ट्स देखे और एज अ रोल ही उनको देखे तो बर्नआउट होने ही वाला है. लेकिन अगर हम होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और वी एज पॉलिसी मेकर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर उनको ऑफर करते जाते हैं ऐसे कुछ सुविधाएं जिससे वो अपना वेलबींग मैनेज कर सके और एक वर्क लाइफ बैलेंस अपने जीवन में अगर फॉलो कर सके, स्ट्राइक कर सके, तो जरूर ऐसे जगह पे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में वो इंस्टीट्यूशन फ्लरिश होनी ही है. बच्चों की नरिशमेंट बहुत सुंदर रीति से होनी ही है.
एडेड टू दैट आवर फैमिली सिस्टम पर्टिकुलरली नाउ बोथ कपल्स वर्किंग एंड यू नो नॉर्मली दैट्स ऑल्सो अदर फैक्टर वर्कलोड एंड मैकेनिकल थिंग. I always say, I go wherever I go. Today, this generation is lucky because they have a affordable parents, advisable parents, but not accessible parents. Kitna parents, you know, student ke liye time dete, paise dete. Oh, you want money, chalo, le leo. So that is also one of the flaw, you know, that is where kitna achha school mein bhi ho, college mein bhi ho, until unless parents spare some time, system is not going to work. That is what we are, you know, slowly. Because of nucleus families and other reasons.
जी बहुत सुंदर पॉइंट, क्योंकि सर जब बात कर रहे थे तो मुझे ये पॉइंट बुद्धि में आया था कि ये सिर्फ एजुकेटर्स की जिम्मेवारी नहीं है. दीपेंद्र दास सर जब बात कर रहे थे कि बच्चा कैसा भी है ऐसा ही अभी आप संभालो, तो ये तो बात नहीं हो सकती ना. हमेशा ही हम स्कूल लेवल से ही इनफैक्ट देख रहे हैं, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे जब बड़े हुए हैं तब की बात है, बट ये हमेशा ही एक कोलैबोरेटिव वर्क है, न कि सिर्फ पेरेंट्स का, न कि सिर्फ टीचर्स का, क्योंकि बच्चे इक्वली रहते हैं दोनों के साथ. इसीलिए एजुकेटर्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है बच्चों को या स्टूडेंट्स को या युवा पीढ़ी को उनको निर्माण करने के लिए. बट एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. तो पॉलिसी मेकिंग में अगर इस चीज को हम इन्वॉल्व करें कि कंपल्सरीली स्कूल लेवल पर, तो कुछ स्कूल जरूर ऐसे हैं जो जहां पे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन ओवरऑल एजुकेशन ही रहता है, इट्स नॉट ओनली पीटीए मीटिंग, है ना, सिर्फ उतना नहीं तो हर एक चीज में उनका पार्टिसिपेशन है. क्या हम कॉलेज लेवल पर ऐसा कुछ अलग सोच सकते हैं जहां पे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहे, और आज के समय पर जब बच्चे बहुत लोनलीनेस फील करते हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया एडिक्शन, सपोर्ट सिस्टम उनके सबसे पहले तो पेरेंट्स हैं और फिर टीचर्स आ जाते हैं, तो अगर ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है तो जरूर कुछ अच्छा हमें मिलेगा. सिर्फ एजुकेटर्स आई डोंट थिंक कि सिर्फ वही सब कुछ कर पाएंगे स्टूडेंट्स के लिए. सो एज अ पॉलिसी मेकर आई वुड लाइक आपको एक ये इनपुट जरूर देना चाहूंगी जो आपसे भी आया था, कि क्या हम कुछ ऐसा कर सके कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पेरेंट्स को बहुत एक्टिवली हम बच्चों के एकेडमिक करियर में इन्वॉल्व कर सके. अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सुदेश दीदी जी को, कि जैसे हमने देखा कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस अभी के समय पर एजुकेटर्स के सामने हैं, स्टूडेंट्स के कारण और उनके खुद के भी पर्सनल लाइफ में कितना सब कुछ है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ उनको दूसरों के बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों की भी जिम्मेवारी तो उनके खुद की ही है। ये सब हैंडल करते हुए जो हम देख रहे हैं कि दे आर नॉट ओनली ओवरवर्कड बट दे आर इमोशनली ड्रेन्ड आउट। तो फ्रॉम राजयोगा पर्सपेक्टिव मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एजुकेटर्स कैसे उनके एनर्जी ड्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनर एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। एक ऑफिस में एक बार गए कोई, तो उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूं। और फिर उसके बाद दूसरा उनका हेल्पर आया, कहता फोन का तो कनेक्शन ही नहीं है, उस समय दूसरे फोन हुआ करते थे। तो ऐसे ही वो कान पर लगा करके बैठे हुए थे। लुक बिजी एंड डू नथिंग, मतलब कहने का है कि हम सोच से ओवर बर्डन्ड होते हैं, काम से नहीं होते हैं। कितने मानते हैं इस बात को? हमारी सोच हमें ओवर बर्डन करती है। आप देखिए, हमारा जो मन है उसको किसी ने ट्रेंड नहीं किया कि तुम्हें एक बात को कितनी बार तक नहीं सोचना है, कितने टाइम तक ये काम पूरा करना है वो तो हमें बता दिया, लेकिन कितने समय तक इस बात को सोचना है वो हमें किसी ने नहीं कहा। तो हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, और ओवर थिंकिंग में जाने से हमारे अंदर की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और ड्रेन होने से हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं आता है। मानते हैं इस बात को आप? तो क्या करेंगे हम? किसी भी बात के लिए अपना एक टारगेट बनाएं कि मुझे इतना ही सोचना है, अब इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन से हमें ये सेंस मिलती है कि कितना हमें सोचना है और कहाँ हमें ब्रेक लगाना है और कितना हमें दूसरों के साथ में बोलना है। तो जो हम इतना अंदर से लिथार्जिक और एकदम ड्रेन आउट अपने को फील करते हैं एजुकेशन फील्ड में एजुकेटर्स, वो यही वजह होती है कि हम एक दूसरे की कमियों को ज्यादा डिस्कस करते हैं। स्टाफ रूम में होंगे तो यही होता है, और एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे की बात कभी आप नहीं देखेंगे कि कोई अपना एजुकेशन के सिलेबस से रिलेटेड कोई बात इतना जिक्र कर रहा हो। तो इस प्रकार की नेगेटिव हम जो चर्चाएं करते हैं ना, इससे हम ड्रेन आउट होते हैं और हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती, और एनर्जी ना होने की वजह से हम स्टूडेंट्स को फिर दे नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन करता है। आपको बताऊं कि जैसे हम भी एजुकेशन फील्ड से हैं, लेक्चरर होम साइंस की मैं रही हूं, तो बहुत सारे अवार्ड्स भगवान ने हमें दिलाए हैं। अगर हम उस लाइफ में होते तो मैं समझती हूँ एक भी अवार्ड नहीं मिलना था, लेकिन भगवान ने बहुत अवार्ड्स दिलाए हैं, नेशनल स्टेट अवार्ड, बेस्ट टीचर सब। तो इसी प्रकार से मेरे एजुकेशनल फील्ड में कॉम्पिटिशन्स के लिए स्टूडेंट्स जाते थे तो हमारी जो प्रिंसिपल होती थी वो कहती थी कि सुदेश मैडम को भेजो, ये जिस भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराती है वो जीत कर आते हैं। तो उसके पीछे बेस क्या होता था, मैं उनको हर चीज की टेक्स्ट बताती थी, कैसे तुम्हें परफॉर्म करना है, कैसे तुम्हें ड्रेसअप होकर जाना है, कैसे क्या करना है, मतलब ओवरऑल उनके जो है एक स्ट्रक्चर उनको दे देती थी। तो उससे उनके मार्क्स फिर अच्छे आ जाते थे। तो कहने का भाव है कि हम केवल यही सोचते हैं कि हमें पढ़ाना है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आए उसके लिए हमको सोचना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हम सब माली हैं। माली का काम होता है पौधा लगाना, उस पर फल लगेगा नहीं लगेगा उसकी चिंता करते रहें तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम टीचर्स अपने को माली समझे, गार्डनर समझें, और बच्चों को जो है हम ऐसा समझें कि इनको हमने सींच दिया, इनको हमने अच्छा पढ़ा दिया, रिजल्ट स्वाभाविक है अच्छा ही आएगा। तो जब हम अंदर से एनर्जेटिक होंगे तभी ये कर पाएंगे। अगर अंदर से हम ओवर थिंकिंग करके अपनी शक्ति को ही क्षीण कर देंगे तो हम किसी को कुछ दे नहीं पाएंगे। ये मेडिटेशन हमें मैसेज देता है।
जी बहुत अच्छा, क्योंकि देने के लिए पहले मेरे पास होना चाहिए तो एनर्जी ड्रेन्ड आउट न हो, इनफैक्ट वो चार्ज होते रहे। उसके लिए दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें अपने विचारों के ऊपर ध्यान देना होगा, और राजयोगा वही सिखाता है। राजयोगा हमें द आर्ट ऑफ राइट थिंकिंग सिखाता है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन मैं सही सोच कैसे रखूं। मेरा जो इनर पास है या इनर रेजिलियंस है उसको कैसे बढ़ाते चलो, ये हम समझते हैं। और जरूर जैसे सर ने भी इस चीज को रखा था कि जरूर ऐसे जो एनजीओज है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्हें एजुकेशन सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करना होगा, जो ये सारी चीजें एजुकेटर्स को सिखाई जाए, फैकल्टी डेवलप प्रोग्राम्स में ये सारी चीजें रखी जाए, जो इनके रेगुलर प्रैक्टिस से जो हमारे एजुकेटर्स है वो इनर पावर को एक्सपीरियंस करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे और एनहांस करते रहे। तो आगे का प्रश्न मैं रितु जी को, डॉक्टर रितु जी को पूछना चाहूंगी कि अगर हमें होलिस्टिकली उनके वेलबींग के बारे में सोचना है और सही मायने में हमें उसे असेस भी करना है कि हम जो भी सारे पॉलिसीज बना रहे हैं या प्रोग्राम्स हमारे यूनिवर्सिटीज में रन कर रहे हैं, तो सच में क्या उससे होलिस्टिक वेलबींग अचीव हम कर पा रहे हैं और किस रेट से वो ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या क्या मेट्रिक्स हम रखें जिनको हम चेक करते चले, जिससे हम जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं उसका हमें रिजल्ट पता चले।
वैसे हम फैकल्टी को बहुत तरीके से असेस करते हैं, मतलब लगातार एक असेसमेंट फैकल्टी का एक ट्रेंड बन गया, लेकिन सच है कि अगर हम असेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं जिसमें सही से होनी चाहिए, जैसे कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिन डिस्कशन से निकल के आ रहा है कि उनका इमोशनल वेलबींग कैसा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो असेसमेंट, उनका साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसा है, किस तरह का स्ट्रेस लेवल्स हैं उनके, राइट, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन किस लेवल का है, वो किस लिमिट तक एंगेज है अपने काम से। कई बार लगातार टीचर्स की तरफ से भी रेजिस्टेंस आ रहा होता है कि ये नहीं करना चाहते, एब्सेंटिज्म भी हो रहा होता है, बहुत जगह से एब्सेंट रह रहे होते हैं, तो वो दिखा रहा है कि कनेक्टेड नहीं है वो जॉब के साथ। तो वेलबींग, होलिस्टिक वेलबींग ऑफ द एजुकेटर, हाउ मच आर यू इन टू द जॉब एंड टू फिक्स दैम इन टू द जॉब। जैसे बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की, देखिए स्पिरिचुअलिटी हम किसी पे इन्फोर्स नहीं कर सकते, ये एक मन की चीज होती है, ऑफकोर्स बार बार डिस्कस होगी तो लोगों को इसकी अहमियत समझ आ रही है, एंड अंडरस्टैंड जितने भी लोग आज यहाँ अटेंड कर रहे हैं वो मान रहे हैं कि जहां जहां हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इधर से ऑपरेट करें तो हम कर सकते हैं। सो माई पॉइंट हियर इज कि स्पिरिचुअलिटी हमें पर्पज से जोड़ती, स्टूडेंट्स में भी स्पिरिचुअलिटी उनको उनके पर्पज से जोड़ती है, एंड वंस यू आर कनेक्टेड विद द पर्पज देन ऑल दीज चैलेंजेस जो हम सब ने भी डिस्कस किए, सर का भी अपना एक्सपीरियंस है, वो सारे चैलेंजेस को हम फिर सॉल्यूशंस निकालते हैं कि हाउ डू वी गो फॉर, अदरवाइज फिर हम नेगेटिव साइकिल में चले जाते हैं। सो असेसमेंट की जहां बात कर रहे हो, ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल इमोशनल उनका असेसमेंट, सोशल असेसमेंट कि उनके पीयर्स के साथ किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, सो अल्टीमेटली ऑल दिस असेसमेंट लीड्स टू काइंड ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स इन द टीचर्स इज ऑल्सो अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट असेसमेंट। कई बार टीचर्स टीचिंग में आ जाते हैं एज अ टेम्पररी थिंग, यू नो आई मीन आर दे रियली वॉन्ट टू बिकम टीचर्स, सो यू कैन नॉट डू अ जॉब ऑल योर लाइफ वेन यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पर्पज। टीचिंग जॉब्स नाउअडेज इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर वेल पेड ऑल्सो, ऐसा नहीं है, पहले थोड़े से नहीं इतना अच्छा होता था, सो कई बार उससे भी अट्रैक्ट हो गए, अगर कोई आया हुआ है तो वो उस पर्पज से नहीं जुड़ रहा, जो पर्पज है वो बहुत लॉफ्टी है, वो बहुत प्रोफाउंड है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक है, बच्चे के ऊपर काम करने का है, जो कि अगेन बहुत चैलेंजिंग है। सो इस तरीके से जब हम उनका असेसमेंट करें, उनके साइकोलॉजिकल इमोशनल, उनके सोशल, और एक और चीज मैं आजकल आपसे कहना चाहूंगी, सब लोग एग्री करेंगे, हालांकि वो सोसाइटी में हम सभी मासेस सब में देख रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि टीचर्स के साथ में भी बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फैटीक है उनमें, डिप्रेशन है उनमें, हार्ट इश्यूज, माय मेनी कलीग्स आर गोइंग थ्रू कार्डियक इश्यूज, बीपी का प्रॉब्लम इज लाइक अ नॉर्मल थिंग है ना, शुगर एंड ऑल दैट, सो दीज आर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ द असेसमेंट शोइंग दैट होलिस्टिकली वो कितने वेलबींग में है, राइट। सो वी नीड टू क्रिएट द सिस्टम्स वेयर दीज ऑल थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, इफ दे आर हेल्दी दे आर हैप्पी यू नो दे आर इमोशनली स्टेबल, एंड वन थिंग आई एम वेरी मच कन्विंस्ड ऑफ इज spirituality is one path, if we induce that with these kind of the you know discussions, because they can connect there, jahan wo burn out hai, jahan wo pareshan hai aur job at the same time wo kar rahe hai, so unko bhi solutions chahiye, so spirituality of course is one point solution where we can become better teachers, better researchers, better compassionate you know parent to the child as well, because that connects us with the purpose। सो दीज फर्दर असेसमेंट्स वी शुड बी एडिंग अपार्ट फ्रॉम हम एपीआई पे बहुत काम कर रहे हैं आजकल, हम और बड़े तरह के उनको स्कोर्स दिए हुए हैं कि उनको अर्न करने ही है साल भर में. सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ टोटल डिफरेंट प्रोफाइलिंग. इट्स नॉट द बायोडाटा, इट इज द बायोग्राफी, जैसे कल बात हुई थी. सो आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी एडेड इन टू द असेसमेंट एंड वी नीड टू हैव अ टोटली चेंज्ड अप्रोच टुवर्ड्स द टीचर्स हु आर गोइंग टू डील विद दिस एजुकेशन सिस्टम for the years to come. If, and it's a very urgent situation. It's not like we have so much time to deliberate and discuss. There should be solutions coming up very soon. Thank you.
Very nice. तो सारे ही जो well-being के aspects हैं आपने उन सारे उनको matrix के अंदर cover किया हुआ है. और जरूर फिजिकल हेल्थ के हिसाब से कुछ ऐसे वहाँ पे नियोजन हो जो वो अपने हेल्थ के बारे में ठीक से समझ सके. डाइट है, न्यूट्रिशन है, एक्सरसाइजेस है, बेसिक लेवल पर हम सबको पता होता है. लेकिन क्या मैं उतने हम मोटिवेटेड रहते हैं जो हम चीज़ों को बैलेंस करके अपने फिजिकल हेल्थ के लिए समय दें और उसको मेंटेन करें. और वैसे ही मेंटली है, इमोशनल वेलबींग है, तो उसका जो फाउंडेशन वो स्पिरिचुअल वेलबींग हमेशा रहता है. तो अगर उन सारी चीज़ों को अगर हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इंक्लूड करते जाए, माना टीचर्स के लिए जो हमारे हाथ में है वो क्या है, FDPs है, ट्रेनिंग्स है. तो ये जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है वेलबींग के, अगर वो हम FDPs में इंक्लूड करते जाए और बार बार उन चीज़ों को हम उनके सामने लाते जाए, तो जरूर सारे तो एजुकेटर्स एडल्ट है, समझदार है, जो दूसरों का जीवन बना रहे हैं, तो क्यों नहीं वो उन सारी चीज़ों को अपने जीवन में ढालेंगे और खुद का जीवन भी बहुत स्वस्थ बनाएंगे. और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सन्मुख उपस्थित है. प्रोफेसर दीपेंद्रनाथ दास जी, आप एकेडमिक लीडरशिप में तो आप जाने पहचाने जाते ही है, लेकिन आप स्विमर है, बहुत एक अच्छे स्विमर है, मैराथन रनिंग भी आप रेगुलरली करते हैं. तो जरूर अंदर कुछ है कि इतना सारा वर्कलोड हैंडल करते हुए ये सारे जो परस्यूट्स है या हॉबीज है जो उनकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो जरूर कुछ डिसिप्लिन है और कुछ बैलेंस वो स्ट्राइक कर रहे हैं जो दोनों को वो ठीक से संभाल पा रहे हैं. तो आप जरूर कुछ इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि ऐसा क्या है जो आप दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं.
पर्टिकुलरली मैं पर्सनली तो इसे बिलीव करता है दैट वन शुड हैव सम हॉबीज एवरीबॉडी. एक्चुअली इफ यू सी द न्यू जेनरेशन दे हैव सम हॉबी, बट वी शुडंट से दैट दोज आर हॉबी, लाइक एडिक्शन टुवर्ड्स द स्क्रॉलिंग ऑफ द मोबाइल, दैट हॉबी इज नॉट एनकरेजिंग. आई पर्सनली बिलीव दैट ईच एंड एवरी पर्सन should have certain capacity to give recreation of themselves. They should not depend for the purpose of recreation to others. Like you are seeing the YouTube, which is or certain reels, which are prepared by someone, and you are getting enjoyment just going through all these things. Rather, one should invest themselves that in certain crises, suppose you are in some isolated places or in some crisis, you have to look towards your strength. Not you should try to have the help based on the strength of the others. So, as it is agreeable by every panelist or the audience, that physical health is very, very important. Just by sounding, it is very important, that doesn't mean anything. But practicing it is very, very difficult. So, two, three things are very important in it, that regularly you are doing something. So, like of, as you have mentioned marathon, I like doing marathon. Marathon is such activities, you are running 42 kilometers or 21 kilometers. You need regular practice. All of a sudden, getting up in the morning and you have participating, it's not that. That regularity actually gives certain guidance in your life. Apart from so much of physical benefits, like of when you are under rigorous health regime, endorphins, it secretes, and in the morning inspirational speech was it was told that that main khush hu, that ultimately you should have after yes. completing everything you should have a feeling that main khush hu. So yes. that gives actually dopamine that you are completing something, passing through from 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. That I always try to, even my students also participate but along with me in the marathon. And it's a very, very challenging world.
Actually.
It's a very competitive world. And it's very difficult to get certain establishment or career option as per of your choice. Or even to get like very good family life, very good social relationship with friends or members of the family, even with husband, wife and their kids. In such situation, you should have certain mental stability,
right.
patience, stamina, endurance, and overall you should have a structure of your body which is very strong to face all sorts of hazards.
Very nice.
If it is not there, structure is such, if there is certain earthquake or certain very strong storm or certain tremors, the way structure actually withstand all these difficulties. In life also, these are the incidences which you cannot predict or you don't have much control over it. There your physical build, your stamina, soundness, all these things helps actually. I usually tell who are coming to my association and I love it actually to do it. And always I say that one should have a hobby.
Very
so
nice.
My hobby is like that. And always a productive which gives actually self-reliance,
जी.
That's how we should be
तो
with everyone.
सर,
singing, painting, writing something, or doing swimming, or marathon,
right.
any sorts of hobby,
actually,
where you get entertainment of yourself.
जी, बहुत सुंदर. आपने जैसे शब्द यूज किया कि जो अलग अलग हॉबीज है अगर हम उनको अपने जीवन में लाते हैं, रखते हैं, कितना भी अभी आप उनका अगर रोल को हो तो जैसे हम सब बिजी है वो तो सुपर बिजी होंगे सारे जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं. ये तो लीडर्स है ना उस फील्ड में, उस संस्था को वो चला रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये अलग अलग हॉबीज को परस्यू कर पा रहे हैं तो जरूर वहां पे कुछ डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, कोई कंसिस्टेंसी है और ये कोई ना किसी प्रकार की मेंटल स्ट्रेंथ है. तो ही इज एन लिविंग एग्जाम्पल बिफोर हिज स्टाफ ऑल्सो, हिज कलीग्स एंड and the students as well. तो ये possible है कि हम अपने physical health को priority दे के, अपने mental emotional health को through अपने hobbies के priority दे के जी सकते हैं और अपने roles and responsibilities को संभाल सकते हैं. और जैसे उन्होंने underline किया, जितना हम physically fit रहते हैं उतना mental well-being के लिए जरूर उसकी मदद हमें मिलती है. तो इसको सामने रखते हुए मैं प्रोफेसर रेड्डी जी से ये पूछना चाहूंगी कि अब लाइक आप ये सारे एस्पेक्ट तो हमारे कवर हुए, बट बिकॉज ही इज स्कॉलर ऑफ लॉ, एक अलग मैं एंगल आपके सामने रखना चाहूंगी. एज अ स्कॉलर ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, डू यू सी एजुकेटर वेलबींग ऑल्सो एज एन इश्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल जस्टिस, फेयरनेस, डिग्निटी, वॉइस एंड इंक्लूजन?
ओके, so yes, institutional I always say one responsibility, whether we are leaders of educator or students, all have one important thing is responsibilities in society. First, individual responsibility, whether it's a justice or dignity or human rights or anything. So individual responsibility, institutional responsibility. As a individual, what is your contribution to the society? So first thing is, we being educators or leaders of educators or implementers of education, I think we have to follow this and then preach and teach and follow. So my this thing is definitely legal side. For instance, what is little, maybe because all are there, what is my contribution to, first before talk about the society, it should start from us. Okay, as a scholar, researcher, so I'm happy to share with you, sir, I did my doctorate from JNU, aerospace law. I'm happy to share with you all that I was fortunate enough to contribute to my country through space law. Last 30 years I'm working, you know, I'm talking about individual responsibilities, because we are educators. First we have to do our thing, and then we have to, you know, talk about the institutions which we are representing. So last 30 years, what I realized was, India is doing well in technology, because we are talking about the, you know, leaders, and India is doing well in technology, but one gap I identified was, we don't have a space law. So I've written, you know, books, articles, and finally, to cut short the story, I don't want, Prime Minister Modi appointed a committee taking my examples, my writings, and then today we have a space law that is pending in the parliament. Of course, it is not passed. So my message to all of us, particularly excellent team we are talking about, first we have to educate the leaders of education, and then we move it to that. Since today we are in mechanical world, materialistic world, mobile relations are there, so whatever we talk about, justice, spirituality, you know, inner thinking or ethical values, I think we have to start from our own, and then every institution. Today, definitely, Brahma Kumaris, you know, they are doing a great job in the spirituality, meditation, all these things. Every institution which we represent, I think we should start from our own, and then, you know, society ultimate, what we call giving back to the society. That kind of thinking we should develop, follow, and teach others. That's my take, is that we should follow, we as an educator, role models, we should follow first, and then we should teach to others. That's my, you know, takeaway.
एक क्वेश्चन मैं आपको ही पूछना चाहूंगी कि सबको ही सेम ही क्वेश्चन मैं पूछूंगी क्योंकि अभी हम चर्चा सत्र के अंत तक आ पहुंचे हैं. कल से अगर हमें एक कोई चेंज लाना है अपने इंस्टीट्यूशन में जिससे एजुकेटर्स के होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर अटेंशन बढ़े और हम उस डायरेक्शन में जा पाए, तो वो एक क्या चेंज आप लाना चाहेंगे?
चेंजेस ऑफकोर्स डेफिनेटली. I told you mechanical world say, you know, we have to come back to the thoda, you know, spirituality or meditation, that kind of, you know, diversion is very much required. You know, but, you know, Professor was mentioning what kind of diversion you take, you know, what suits to you, we have to decide, but definitely we have to take diversion. That diversion should be more into not mechanical, not materialistic, not mobile, but I think something, you know, inner or our own thing, that is what I...
राइट, वेरी नाइस. सो सर ने जैसे कहा कि एजुकेशनल सिस्टम्स में स्टूडेंट्स के लिए तो सही जरूर करना ही है, लेकिन एजुकेटर्स के वेलबींग के लिए स्पिरिचुअलिटी का इंक्लूजन होना जरूरी है जिससे इनर पावर्स उनके स्ट्रेंथन होते जाए. डॉक्टर पराग जी, आपके लिए भी सेम ही क्वेश्चन है. आपने तो बताया था आप बहुत सारे इनिशिएटिव आपने ऑलरेडी लिए हैं, बट और एक क्या आप करना चाहेंगे?
आई थिंक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप. So if you are in any need, you can immediately get WhatsApp on support. It's a low-cost solution to reduce their stress.
Sir, आपसे और एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो काम है वो नॉलेज मैनेजमेंट और गवर्नेंस में ज्यादा है, तो क्या हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो अच्छे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एजुकेटर्स के होलिस्टिक वेलबींग के लिए, वो शेयर हो किसी प्लेटफॉर्म पे, एंड वी ऑल नो दैट व्हाट अदर यूनिवर्सिटीज प्रैक्टिसिंग वेल.
No, this is always there. Knowledge management is inheritance in our culture. Mahabharat, Ramayana, this all has been, we dealt with 5,000 years plus our history. So that is in our blood, but we are not using it. So definitely repository, and someone can start the case study practices wherever the transformation happens, because we have, today I was searching where the well-being programs are there. Hardly any Indian contents are available. Harvard has done, Oxford has done, but nothing what you know JNU has done, or what is the, you know, DU has done. So we need to have such repository where for the educators' well-being, if anyone has taken initiatives, we you know circulate among all that. So I think that's the need for an hour. Institution like AIU or, you know, UGC can do that, because we always publicize punishment. We never publicize the good work done by the institution. So I think, yeah, we should work on that.
Okay. Thank you, sir. Dipendra Das ji, आपके लिए भी same ही question है कि एक ऐसा क्या change आप JNU में लाना चाहेंगे? कोई एक ही चेंज जिससे हम कहें कि एजुकेटर्स के होलिस्टिक वेलबींग के लिए मदद हो, एक चेंज दिखाई दे।
वेरी सिंपल थिंग बट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। इफ यू सी द वे वी आर मूविंग आवर आई मस्ट से द पॉलिटिकल प्रोसेसेस आर बीइंग हैपेंड और इन द एजुकेशन एवरीवेयर पीपल आर वेरी वेरी मच कंसर्न्ड एंड अवेयर अबाउट द राइट्स everybody what is my entitlement whether I am getting it or not and all the system should serve me but people are not at all bothered and it is fading it away whatever it was there in the minds of the people with the progress of time these perceptions are going away from each and everybody regarding how much they can do for the society for the system or for the nations as a whole
okay.
means that their contribution not me
ji
but you that serving others and drawing achievement and happiness from that it is missing
very nice
so they should have a little bit of undermining regarding their perceptions of right rather than their duties and contributions to the society.
Very
nice. Known to everybody, it's very, very difficult okay. how to inculcate and make a culture of it.
I understand where you are coming from, because sir, jo hai, unka bahut active involvement JNU mein, NSS and NCC mein hai, jahan pe hum samajhte ek selfless service ki jati hai. Aur jaise Ritu ma'am ne bhi bahut acche se joda tha, ki jab tak purpose nahi hai, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी तो जिस चीज को सर खुद जी रहे हैं तो वो उसी को आगे प्रमोट करना चाहेंगे कि जितना हम सेल्फलेस सर्विस में समय देते हैं जैसे डोपामाइन की भी बात आई थी मैंने जो एक एक खुशी का अनुभव है कि जो आनंद हम सब कुछ सब अनुभव करना चाहते हैं हम समझते जिन्होंने भी इस चीज को जीवन में एक्सपीरियंस किया है कि जितना हम सेल्फलेसली दूसरों को देते हैं तब की जो एक खुद के प्रति एक भावना उत्पन्न होती है एक आनंद की भावना या एक सेल्फ रिस्पेक्ट उत्पन्न होता है या अनुभव होता है वो और किसी भी चीज से या कोई अचीवमेंट से नहीं हो सकता है तो एक बहुत सुंदर पहलू उन्होंने हमारे सामने रखा कि एजुकेटर्स अगर अलग अलग प्रकार के सेल्फलेस सर्विसेज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते जाए तो जरूर वो जो एक स्पिरिचुअल लेवल पर या मेंटल इमोशनल लेवल पर वेलबींग ढूंढने की कोशिश आज हम कर रहे हैं वो स्वतः रूप से उससे मिलता जाएगा रितु मैम आपको भी सेम क्वेश्चन है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन में अपनी यूनिवर्सिटी में वो क्या एक चेंज लाना चाहेंगे
थैंक्स टू डॉक्टर दास मैं इनसे आज बड़ी इंस्पायर हुई हमारे बहुत अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है विच मैनेजमेंट ऑलवेज एनकरेज ऑल फैकल्टीज टू यूज यू नो टू वॉट एवर लेवल दे वॉन्ट टू वन रिफॉर्म बिकॉज लर्निंग फ्रॉम हिम लाइक ही वाज सो कन्विंस्ड बिकॉज आई कुड सी हिज हैप्पीनेस ऑल्सो एंड आई कुड रिलेट टू दैट ऑल्सो यू नो हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी एंड अ हैप्पी वन ऑल्सो वी कैन से सो वन थिंग आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू टेक अवे विल बी मेकिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंपल्सरी फॉर द फैकल्टी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स आई हैव टू यू नो कनेक्ट द डॉट्स बट आई हैव अंडरस्टूड the urgency of including the spiritual you know paths for the faculty development programs mm-hmm. not going all the time for the other conventional things that we are doing because in long term this league will help us holistically you know the things the places where we are struggling will be sorted out once suppose we are able to do this spiritual aspect in the development of the faculty is going to be giving us sustainable results
thank you so much so lastly अभी सुदेश दीदी ने जो सबसे एक सार निकल के आया हुआ है तो वो दीदी ने सबसे पहले ही फर्स्ट आंसर में ही हाईलाइट किया था कि स्पिरिचुअली जितना हम एंगेज करते जाएंगे उनको एम्पावर करते जाएंगे बाकी वेलबींग अपने आप ही आता जाएगा तो आज के चर्चा सत्र से जो हमने समझा हुआ है कि हर प्रकार के वेलबींग का जो फाउंडेशन है वो है स्पिरिचुअल वेलबींग एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय स्पिरिचुअल वेलबींग ये सिर्फ आत्मा, जो आज का फर्स्ट लेसन था, जिन्होंने भी आज सुबह वो अटेंड किया हुआ है, बीइंग हम कहते हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन तो शब्द ह्यूमस इस लैटिन वर्ड से आता है, जो कहता है कि मिट्टी का पुतला, लेकिन इस मिट्टी को पुतले को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो बीइंग है, जो मैं हूं। ये बीइंग सर्व गुण शक्तियों से संपन्न होना माना ही स्पिरिचुअल वेलबींग है। जितना हम इनर पावर्स और वर्च्यूज से भरते जाते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल वेलबींग। तो पीस है, हैप्पीनेस है, कंपैशन है, इनर स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, जितना हम इनसे भरते जाएंगे तो स्पिरिचुअल वेलबींग है। तो आप देखो, इससे बहुत स्वाभाविक रूप से मेंटल वेलबींग, इंटेलेक्चुअल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल वेलबींग, ये सारा अपने आप ही बहुत सहज रूप से हमारे जीवन में आता जाएगा। तो मैं जरूर आप सबको, मान्यवर मंच को ये बताना चाहूंगी और एजुकेटर्स को भी, ब्रह्मा कुमारीज के एजुकेशन विंग से बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे एक डिजिटल वेलनेस हमारा 30 आवर्स का 2 क्रेडिट कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, और टीचर्स के लिए हम ट्रेनिंग्स भी लेते हैं कि कैसे साइंटिफिकली उसमें बताया गया है कि ये जो हम बार बार मोबाइल चेक कर रहे हैं, यूज करते हैं या चिपके हुए रहते हैं, इससे कैसे ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, हम इमोशनली आइसोलेट हो रहे हैं, सोशली आइसोलेट हो रहे हैं, तो उससे कैसे एक मेंटल हेल्थ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता जा रहा है, तो वो कोर्स हम चलाते हैं। फिर मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग, की होलिस्टिक वेलबींग चाहिए बट कैसे उसको राजयोग एक मदद कर सकता है या स्पिरिचुअलिटी मदद कर सकता है होलिस्टिक वेलबींग को हम जीवन में लाए। वैसे वैल्यू वर्कशॉप्स हम रखते हैं फैकल्टीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और फिर और एक प्रोग्राम है जहां पे हम मेंटल अवेयरनेस और एडिक्शन अवेयरनेस के लिए भी सेशंस स्टूडेंट्स के लिए लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स हम ऑलरेडी ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ले ही रहे हैं, तो जहां कहां पे भी वो कोलैबोरेशन पॉसिबल हो तो ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन विंग इज ऑलवेज हैप्पी टू ऑफर दोज सर्विसेज। तो काम चल ही रहा है और मिलकर और हम करते चलेंगे। तो आज का चर्चा सत्र हम यहाँ पे ही समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें, हमारे सारे मंच पर उपस्थित जो आदरणीय पैनलिस्ट है, उनको गॉडली गिफ्ट्स देंगे, लेके आएंगे सुदेश दीदी द्वारा, सबको गॉडली गिफ्ट्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।